मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 18 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले पूरे सप्ताह हमने एक ऐसे इशू पर बात की है जो कोई बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा राजनीतिक या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी नहीं था, या कि देश की अभी जितनी हुई हमारी बड़ी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं था। बहुत एक सिंपल सा उदाहरण था जो मैंने व्हाट्सएप का आपको दिया था, आपको शायद याद होगा। हाँ, और जो नए श्रोता जुड़े हैं उनसे माफी चाहूंगा कि उन्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आज की बात मेरी वो समझ जाएंगे। बहुत ही सामान्य सा मुद्दा था। अब होता क्या है कि सामान्य सा मुद्दा तो था लेकिन उस मुद्दे में जो बातें शामिल थी वो सामान्य नहीं थी बल्कि बहुत ही असाधारण बातें थी। सच पूछिए तो सरल बात होने के बावजूद वो हम सबकी जिंदगियों के बहुत ही कोर या कह लीजिए बहुत ही केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा था जो हर क्षण हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। देखिए हम सब की एक आदत सी हो गई है बात व्यवहार करने की। हो सकता है कि उस स्टूडेंट की जगह मैं रहा होता तो शायद मैं भी वही कर रहा होता, आई डोंट नो। तो जब हम किसी भी काम को करते हैं तो करने के पीछे यह काम सही है या गलत है हम इसका निर्धारण कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, हम सोचते हैं कि नहीं यह धर्म की दृष्टि से गलत नहीं है तो सही होगा, ये नीति की दृष्टि से गलत नहीं है तो सही होगा, ये कानून की दृष्टि से भी गलत नहीं है तो सही होगा, ये शिष्टाचार के लिहाज से भी सही है तो सही होगा। लेकिन जो हमारी जिंदगी जिन चीजों की जरूरत समझती है, याद रखिए वो धर्म नीति परंपरा संस्कार शिष्टाचार से वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तो मनोविज्ञान की दुनिया है और मनोविज्ञान की दुनिया का मतलब है मनुष्य का जो मन है उसकी दुनिया, तो उसका जो विज्ञान है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हम उसी डिफरेंट दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम सामान्य तौर पर समझ नहीं पाते हैं। और हम समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखिए, वहां इस तरह से समझाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। यहां तक कि आप हमारी सामाजिक व्यवस्था को देखिए, समाज में आप परिवार को भी शामिल कर लीजिए, वहां भी हमें कोई ऐसी हिदायतें नहीं दी जाती, ऐसे निर्देश नहीं दिए जाते, हम में कोई ऐसी गलतियां नहीं निकाली जाती कि हम सतर्क हो सके, बशर्ते कि वो सामाजिक और परंपराएं और कानूनी दृष्टि से सही हो सकता है कि उनकी अपनी सीमाएं हैं कि उनको भी नहीं लगता है कि कुछ गलत है। उदाहरण के तौर पर आइए, जो मैंने इससे पहले आपको व्हाट्सएप की बात बताई थी उसी को और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो जो स्टूडेंट है, मान लीजिए अब कुछ नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई तुम तो आईएएस की तैयारी करने वाले थे, क्या बात है तुम कुछ पढ़ते लिखते दिखाई नहीं दे रहे हो? तो देखिए वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मैंने डॉक्टर अग्रवाल से सिलेबस मांगा था लेकिन उन्होंने सिलेबस नहीं दिया, तो जब सिलेबस ही नहीं दिया तो मैं कैसे पढ़ाई करूं, राइट? अब पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया होगी यहां आपको देखना होगा, क्योंकि पेरेंट्स की प्रतिक्रिया ही मेरा निर्माण करेगी जैसा पेरेंट्स मुझे कहेंगे। तो पेरेंट्स में या कह लीजिए इतनी समझ नहीं है, इतनी गहराई नहीं है, या अपने बच्चों से कुछ इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो उनकी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दिलाएंगे, वो क्या कहेंगे कि सच बात है जब सिलेबस ही नहीं दिया तो कोई कैसे पढ़ सकता है, भाई सिलेबस तो जरूरी होता है, थोड़ी बहुत तो मेरे बारे में जानकारी ले लेंगे कि ये कौन है, तो फिर कहेंगे कि भैया जो अफसर आदमी होते हैं देखो वो किसी के नहीं होते, किसी के सुनते नहीं है, तुमने गलत आदमी से मांग लिया, फिर और कहीं से कोशिश करो, देखो तुमको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो छोड़ो छाड़ो, क्या करना है, ये परिवार में होगा। और अगर वो अपने दोस्तों के पास जाए और समाज में और किसी के पास जाए और इसके बारे में बात करें तो वहां भी लगभग लगभग इसी तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी, इसी तरह की प्रतिक्रिया कि हाँ हाँ देना चाहिए था, भला ये कोई बड़ी चीज है क्या, उनको देने में क्या लगता, दो मिनट लगते उनको, फिर जब वो इसके टीचर हैं तो उनके पास होगा ही, तो भेज देने में उनका क्या पैसा लग जाता, अगर भैया पैसे ही मांगना था तो लिख देते कि इतने पैसे दो तो हम भेज देंगे, लेकिन कम से कम उन्हें देना तो चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो तैयारी कोई कैसे कर सकता है, किसी की पढ़ाई कैसे शुरू हो सकती है, वह भी इसी तरीके से, मतलब इस स्टूडेंट का बचाव करेंगे कि नहीं तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, जो गलती है वो दूसरों की है। दोस्तों हम सब के साथ जो घटनाएं घटती हैं और खासकर उन चीजों को देखिए कि जिसमें हमें असफलताएं मिलती हैं, जिनमें हमसे चूक हो जाती है। आप उनका मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको मूल्यांकन थोड़ा गहराई में जाकर के करना पड़ेगा। हम सबकी आदत देखी सतह पर देखने की है, हम चीजों को सतह पर देख करके और अपने फैसले दे देते हैं। जीवन सतह पर नहीं होता है, जीवन सतह के नीचे होता है। आपको उन चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें असफल रहा हूं तो मैं क्यों रहा हूं। सामान्यतया होता क्या है कि हम अपनी असफलता का सारा दायित्व, जिम्मेदारी दूसरों पर थोप देते हैं कि उनके कारण ऐसा हुआ। हम अपने को शामिल नहीं करते। और सोच करके देखिए कि जब तक हम अपने को शामिल नहीं करेंगे, असफलताओं के कारण हम खुद को नहीं मानेंगे, तब तक हम अपने आप को सुधारेंगे कैसे, क्योंकि हम तो सही ही हैं। और जब तक हम अपने को सुधारेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी काम को उसी तरह से करते रहेंगे जिस तरह से हमने अभी किया था। और जब हमने अभी किया था तो उसमें असफलता मिली है, तो स्वाभाविक है कि अब जब मैं फिर से उसी तरीके से दूसरे काम करूंगा तो मुझे उसमें भी असफलता मिल जाएगी। और जब लगातार असफलताओं की मैं एक श्रृंखला बन जाऊंगा तो फिर मैं कहां पहुंच जाऊंगा कि मेरे भाग्य में कुछ खोट है, मेरी तकदीर में ऐसे ही लिखा हुआ है, या पूर्व जन्म का कुछ ऐसा होगा। तो फिर मैं किसी ज्योतिष शास्त्र या किसी पंडित पुरोहित या बाबा के शरण में चला जाऊंगा कि बाबा कुछ करो। और बाबा क्या कर लेंगे इसमें, बाबा कुछ करेंगे, नो डाउट, को चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ करेंगे। अब वो उनके करने से होता है या नहीं होता है ईश्वर जाने, हो सकता है कि इत्तफाकन कुछ हो ही जाए। और जब इत्तफाकन कुछ हो जाता है अब देखिए क्या होगा, हम पूरी तरह से फिर उन पर निर्भर हो जाएंगे। नहीं, हम तो करेक्ट थे, हम तो सही थे, मामला कुछ कहीं और गड़बड़ था। और जहां वो गड़बड़ था ना, बाबा जी की बभूत से या इस मंत्र से या इस पूजा से, वो चीज बिल्कुल ठीक हो गई और फिर से हम एक बड़ी गलती करने की दिशा में बढ़ चुके होंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ नहीं देखा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सोसाइटी में देखिए, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, एक दो नहीं कई कई मिलेंगे। आप अपने आसपास देखिए कि जो जो भी काम करते हैं वे लोग उसी में सफल हो जाते हैं। और दूसरे आपको ऐसे लोगों की भी जमात मिलेगी कि वो जिस काम में हाथ लगाते हैं उसी में फेल हो जाते हैं, उसी में असफल हो जाते हैं। तो फिर कारण क्या है दोस्तों? इसे अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हम सब अपने अंदर के बहुत उन ब्लैक स्पॉट, उन काले धब्बों को पकड़ पाएंगे जो हमारी ऊर्जा को चमकदार बनाने के राह में बाधा बने हुए हैं। और जैसे ही हमारी वो पकड़ में आ जाएंगी चीजें, स्वाभाविक तौर पर हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वो चीजें दूर हो जाएंगी, आप पाएंगे कि आपके जीवन में पूर्णिमा का प्रकाश उतर गया है, आपके चारों तरफ चांदनी रात फैल गई है। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही हम लोग अब इस विषय को समाप्त भी करते हैं। एक सूचना है मित्रों, का गजेटेड हॉलीडे है, इसके बाद सैटरडे संडे है, तो सीधे तीन दिन बाद सोमवार को आप सबसे मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा शुभकामनाएं देते हुए। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।